एकत्र ज्ञानगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं।
हाँ, जिसने निवेश की दुनिया में काफी हलचल मचाई है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
बिल्कुल, बर्टन मैलकील की ए रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट। ये एक तरह से निवेश बाइबल मानी जाती है कई लोगों के लिए,
और इसकी जरूरत आज शायद पहले से भी ज्यादा है,
है ना? मतलब हर कोई सोचता है पैसा कैसे बढ़े, बचत कैसे काम करे।
हाँ, और शेयर बाजार वो एक पहेली जैसा लगता है। कभी लगता है बहुत पैसा बन जाएगा, कभी डर लगता है सब डूब ना जाए।
और इतनी सलाहें, इतने एक्सपर्ट्स टीवी पर, इंटरनेट पर, आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई करें तो क्या करें। क्या सच में कोई तरीका है बाजार को लगातार हराने का?
यही यही वो सवाल है जिसका जवाब मेलकिल ढूंढते हैं।
हाँ,
और उनका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है शायद।
क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं शायद ये कोशिश ही गलत है, बाजार को हराने की कोशिश। शायद रास्ता कहीं और है, ज्यादा सरल, ज्यादा भरोसेमंद।
तो ये किताब उन लोगों के लिए है जो निवेश के शोर शराबे से कुछ स्पष्टता चाहते हैं।
बिल्कुल। और जो नजरिया दे रहे हैं बर्टन मैलकील, वो कोई सिर्फ किताबी प्रोफेसर नहीं है।
हाँ, ये जानना जरूरी है कि उनकी बात में दम क्यों है। उनका अनुभव सिर्फ क्लासरूम का नहीं है।
सही का। उनकी पृष्ठभूमि देखें तो एक तरफ तो वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सालों तक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे, हार्वर्ड से MBA, प्रिंसटन से PhD, अकेडमिक साख तो जबरदस्त है।
लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं।
हाँ, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने वॉल स्ट्रीट को अंदर से देखा है। वो अमेरिकी राष्ट्रपति की आर्थिक सलाहकार परिषद में रहे हैं।
अच्छा।
कई बड़ी कंपनियों के बोर्ड पर रहे हैं, और शायद सबसे हम बात, वो वैनगार्ड ग्रुप के डायरेक्टर भी रहे हैं।
वही वैनगार्ड जो कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स के लिए जाना जाता है।
जी हाँ, वही, जिस चीज की वकालत ये किताब करती है उस कंपनी से वो जुड़े रहे हैं। तो उनमें ये गजब का मिश्रण है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल अनुभव भी।
मतलब वो जानते हैं कि किताबें क्या कहती हैं और असल बाजार कैसे चलता है। उतार चढ़ाव, बबल, क्रैश सब देखा है उन्होंने।
बिल्कुल, इसीलिए उनकी बातों में वजन है।
चलिए तो अब सीधे किताब पर आते हैं।
जी,
इसका मकसद क्या है सरल शब्दों में?
बहुत सीधा सा मकसद है, निवेश को आम लोगों के लिए आसान बनाना। वॉल स्ट्रीट की जो जटिल भाषा है, जो रणनीतियां हैं, उनके जाल से निकालकर एक साफ सबूतों पर आधारित रास्ता दिखाना,
जिससे लोग अपना पैसा बढ़ा सकें।
हाँ, धन निर्माण कर सकें। और इस रास्ते का जो आधार है वो किताब के नाम में ही है, रैंडम वॉक।
रैंडम वॉक मतलब
जैसे कोई कहीं भी चल रहा हो।
हाँ,
कुछ वैसा ही। मैलकील कहते हैं कि शेयर बाजार की जो रोज की चालें हैं वो बहुत हद तक अप्रत्याशित है, रैंडम है, जैसे कोई अंदाजे से चल रहा हो। आप उसके पिछले कदम देखकर ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि अगला कदम कहाँ पड़ेगा।
ओह, तो अगर कीमतें रैंडम तरीके से चलती हैं तो फिर
लगातार सही स्टॉक चुनना या ये अंदाजा लगाना कि कब बाजार में पैसा लगाना है और कब निकालना है, जिसे मार्केट टाइमिंग कहते हैं,
वो लगभग नामुमकिन है।
बिल्कुल, ये किस्मत का खेल ज्यादा हो जाता है, हुनर का कम। ये बात शायद बहुत से फंड मैनेजरों को अच्छी ना लगे।
हाँ, ये तो उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवाल उठाता है।
सही कहा। और यही मैलकील अपना समाधान देते हैं। वो कहते हैं, बाजार को हराने की कोशिश छोड़िए,
तो फिर क्या करें?
बाजार के साथ चलिए। सबसे समझदारी भरा तरीका है कम लागत वाले, वाइडली डाइवर्सिफाइड, यानी जिनमें बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स हों, वैसे इंडेक्स फंड खरीदना।
इंडेक्स फंड जैसे जो पूरे बाजार या सेंसेक्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं।
हाँ बिल्कुल। और उन्हें खरीद कर लंबे, बहुत लंबे समय तक रखना, होल्ड करना।
जैसे एक पेड़ पर दांव लगाने के बजाय पूरे जंगल का हिस्सा खरीदना।
क्या बढ़िया उपमा है, बिल्कुल यही। इससे होता क्या है, पहली बात आपकी लागत बहुत कम हो जाती है, कोई मैनेजर बार बार खरीद बिक्री नहीं कर रहा,
ठीक है।
दूसरा आपका जोखिम बट जाता है, आप किसी एक कंपनी के भरोसे नहीं है,
और तीसरा,
तीसरा सबसे शक्तिशाली, आपको कंपाउंडिंग की ताकत का फायदा मिलता है, समय के साथ आपका पैसा बढ़ता जाता है,
चक्रवृद्धि ब्याज, छोटी बचत भी बड़ी बन जाती है।
बिल्कुल। ये किताब हमें निवेश के बेसिक से लेकर इतिहास के कुछ बड़े बाजार बबल्स तक ले जाती है।
जैसे वो हॉलैंड वाला ट्यूलिप मेनिया 17वीं सदी में।
हाँ, जब एक फूल के बल्ब की कीमत एक घर जितनी हो गई थी, सोचिए। या फिर 2000 का डॉट कॉम बबल।
ये उदाहरण दिखाते हैं कि बाजार हमेशा लॉजिकल नहीं होता।
सही कहा। मैल्किल यहाँ दो तरह की सोच बताते हैं। एक है फर्म फाउंडेशन थ्योरी,
यानी कीमत कंपनी के असली मूल्य पर आधारित हो, उसकी कमाई, संपत्ति वगैरह पर।
हाँ, और दूसरी है कैसल इन द एयर थ्योरी, हवा में महल बनाना।
मतलब कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आगे कोई और क्या दाम देने को तैयार होगा, चाहे वो अतार्किक ही क्यों न हो।
बिल्कुल, और बबल्स अक्सर इसी दूसरी सोच से बनते हैं, लालच और डर हावी हो जाते हैं।
अच्छा, फिर किताब के अगले हिस्से में मैल्किल क्या करते हैं?
वो उन रणनीतियों की आलोचना करते हैं जो पेशेवर निवेशक अक्सर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है तकनीकी विश्लेषण का,
यानी वो चार्ट्स और पैटर्न देखकर भविष्य बताने की कोशिश।
हाँ वही, और मैल्किल इसे क्या कहते पता है?
क्या?
वित्तीय ज्योतिष, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी।
अच्छा, मतलब वो इसे विज्ञान नहीं मानते?
बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं ये छद्म विज्ञान है, क्योंकि कीमतें तो रैंडम है, तो पिछले पैटर्न भविष्य कैसे बता सकते हैं। यही वो अपना वो मशहूर बंदर वाला उदाहरण देते हैं।
हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में कि आंखों पर पट्टी बांधकर बंदर भी डार्ट फेंककर उतना ही अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता है जितना एक्सपर्ट्स।
यही?
हाँ।
अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, ये पूरी फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री पर सवाल है।
हाँ, वाकई चौंकाने वाला है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई डेटा है?
हाँ, वो आंकड़े भी देते हैं अपनी बात साबित करने के लिए। फिर वो आते हैं मौलिक विश्लेषण पर, फंडामेंटल एनालिसिस,
यानी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना, मैनेजमेंट को समझना, इंडस्ट्री को देखना।
हाँ, इसे मैल्किल ज्यादा सम्मान देते हैं।
अच्छा,
कहते हैं ये ज्यादा लॉजिकल है।
लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ भी एक लेकिन है।
बिल्कुल है, वो कहते हैं कि मौलिक विश्लेषण से भी लगातार बाजार को मात देना लगभग असंभव है।
अरे क्यों? ये तो ज्यादातर लोग करते हैं।
हाँ करते हैं, पर मैल्किल के अनुसार पहली बात, आपको सही और पूरी जानकारी हमेशा नहीं मिलती। दूसरी, भविष्य का अंदाज़ा लगाना कि कंपनी कितना ग्रो करेगी, ये बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात जो हमें उनके अगले बड़े आइडिया पर लाती है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, EMH।
अच्छा, कुशल बाजार परिकल्पना।
ये क्या है? ये इस किताब का समझिए केंद्रीय स्तंभ है। इसका सरल मतलब है कि बाजार बहुत कुशल है, जानकारी को प्रोसेस करने में बहुत तेज है।
कैसे?
जैसे ही कोई भी नई जानकारी, अच्छी या बुरी, पब्लिक होती है, वो लगभग तुरंत ही शेयर की कीमतों में शामिल हो जाती है, कीमत एडजस्ट हो जाती है।
ओ, तो मतलब अगर कोई अच्छी खबर आई तो जब तक वो मुझ तक पहुंचेगी, शेयर का दाम पहले ही बढ़ चुका होगा?
ज्यादातर मामलों में हाँ, जब तक आपके पास कोई अंदरूनी जानकारी ना हो जो कि गैरकानूनी है, तब तक उस जानकारी से फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता।
तो अगर बाजार इतना कुशल है, तो फिर कोई कैसे लगातार ऐसे स्टॉक ढूंढेगा जो सस्ते हों, अंडर वैल्यूड हों?
यही तो बात है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर एक्टिव फंड्स जो यही करने की कोशिश करते हैं, अपनी फीस काटने के बाद अपने बेंचमार्क इंडेक्स से पीछे रह जाते हैं।
बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स?
हाँ, आंकड़े बार बार यही दिखाते हैं, लंबे समय में ज्यादातर एक्टिव फंड इंडेक्स को नहीं हरा पाते।
तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इससे जुड़ा है क्या वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, MPT?
हाँ बिल्कुल, जिसके लिए हैरी मार्कोविट्स को नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसका मूल मंत्र क्या है? विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन।
यानी सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो।
एकदम सही, मैल्कॉल इसे कहते हैं निवेश में एकमात्र मुफ्त लंच।
मुफ्त लंच?
हाँ,
क्यों?
क्योंकि आप अलग अलग तरह की संपत्ति जैसे शेयर, बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट, इनको मिलाकर अपने पोर्टफोलियो का कुल जोखिम कम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपना अपेक्षित रिटर्न कम करने की जरूरत नहीं।
अच्छा,
जैसे एक टीम में अलग अलग स्किल के खिलाड़ी हों तो टीम ज्यादा संतुलित रहती है।
बिल्कुल वही बात, जोखिम कम, वो भी बिना कीमत चुकाए।
हाँ
ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, अब प्रैक्टिकल बात। किताब का आखिरी हिस्सा इसी पर है।
हाँ, व्यावहारिक सलाह। सबसे पहले एसेट एलोकेशन, परिसंपत्ति आवंटन,
यानी ये तय करना कि कितना पैसा शेयर में, कितना बॉन्ड में वगैरह।
हाँ, और मैल्किल कहते हैं कि ये सबसे जरूरी निवेश निर्णय है, आप कौन सा स्टॉक या फंड चुनते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी।
तो इसे कैसे तय करें?
वो एक सरल नियम बताते हैं, आपकी उम्र, आप जितने युवा हैं उतना ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, मतलब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी यानी शेयर्स का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए।
और जैसे जैसे उम्र बढ़े, रिटायरमेंट पास आए,
वैसे वैसे इक्विटी कम करके सुरक्षित चीजों जैसे बॉन्ड्स या डेट फंड का हिस्सा बढ़ाते जाना चाहिए, मान लीजिए युवा हैं तो 80-90% इक्विटी, रिटायरमेंट के पास हैं तो शायद 40-50% इक्विटी।
समझ गया। और फिर आती है उनकी मुख्य सलाह।
हाँ, जिसे वो बार बार दोहराते हैं, अपने निवेश का बड़ा हिस्सा कम लागत वाले ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड या ETF में लगाएं।
और लागत पर बहुत जोर देते हैं वो, है ना?
बहुत ज्यादा लागत, 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 क्योंकि जो फीस छोटी सी दिखती है 0.5% या 1%, वो जब सालों साल कंपाउंड होती है
तो रिटर्न का बड़ा हिस्सा खा जाती है।
बिल्कुल, वो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग लागत का अत्याचार। लाखों का फर्क पड़ सकता है लंबे समय में।
बाप रे, तो कम लागत वाले फंड ढूंढना बहुत जरूरी है।
अत्यंत जरूरी। और आखिर में वो बात करते हैं व्यवहारिक वित्त की, बिहेवियरल फाइनेंस।
यानी हम अपनी भावनाओं का शिकार कैसे होते हैं?
हाँ, जैसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना, या नुकसान होते ही घबरा जाना, या सब खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लूं वाली भेड़ चाल।
डर और लालच।
बिल्कुल। मैल्किल कहते हैं सफल निवेश के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, एक योजना बनाना और उस पर टिके रहना, चाहे बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो।
तो अगर हम इन सब बातों का निचोड़ निकालें, मैल्किल के मुख्य संदेश क्या हैं?
पहला, बाजार कुशल है, उसकी चालें रैंडम है, उसे लगातार हराने की कोशिश बेकार है।
दूसरा,
मार्केट टाइमिंग और स्टॉक पिकिंग, ये ज्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करता, किस्मत का खेल है। तीसरा, पैसिव इन्वेस्टिंग यानी इंडेक्स फंड में निवेश, एक्टिव इन्वेस्टिंग से बेहतर है, मुख्य कारण कम लागत।
चौथा, एसेट एलोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, इक्विटी और डेट का सही मिश्रण चुनें।
पांचवा, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, ये जोखिम कम करने का मुफ्त तरीका है।
छठा, लागत पर ध्यान दें, कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड चुनें, हर बचाया वो पैसा आपका रिटर्न है।
और सातवां, अपनी भावनाओं पर काबू रखें, डर और लालच से बचें, अनुशासन और धैर्य रखें, लंबा सोचें।
इस किताब में कुछ पंक्तियां सच में याद रह जाने वाली हैं, जैसे वो बंदर वाला उदाहरण।
हाँ, आंखों पर पट्टी बांधा बंदर डांट फेंककर भी विशेषज्ञों जितना अच्छा पोर्टफोलियो चुन सकता है, ये सीधे चुनौती है।
और वो वोटिंग मशीन और वजन मशीन वाली बात।
हाँ, अल्पावधि में बाजार एक वोटिंग मशीन है, यानी पॉपुलैरिटी पर चलता है, लेकिन लंबी अवधि में ये एक वजन मशीन है, यानी असली मूल्य पर चलता है। बहुत गहरी बात है।
और रैंडम वॉक का सार,
पिछले कार्यों के आधार पर अनुमानित नहीं किए जा सकते। चार्ट्स देखने वालों के लिए सीधा संदेश।
एसेट एलोकेशन पर क्या कहा था?
सबसे महत्वपूर्ण निवेश निर्णय परिसंपत्ति आवंटन है, न कि कौन से स्टॉक खरीदने हैं। फोकस सही जगह रखने की बात।
और डाइवर्सिफिकेशन वाला मुफ्त लंच।
बिल्कुल, विविधीकरण ही निवेश में एकमात्र मुफ्त लंच है, याद रखने लायक।
और लागत पर वो तीखी बात।
आप अपने पोर्टफोलियो से जो घटाते हैं लागत, उसे कम करके अपनी संपत्ति बढ़ाने का सबसे पक्का तरीका है। ये तो गांठ बांध लेने वाली बात है।
ठीक है, ये सब सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, पर कोई इन्हें अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारे? पहला कदम क्या हो?
पहला कदम तो सोच बदलने का है, ये मानना कि शायद आप या आपका सलाहकार बाजार को लगातार हरा नहीं सकते, उन हॉट टिप्स के पीछे भागना बंद करना।
फिर
एक्शन, अपनी निवेश रणनीति को आसान बनाएं, एक्टिव फंड्स या सीधे स्टॉक लेने के बजाय अपने निवेश का बड़ा हिस्सा, कोर हिस्सा, कम लागत वाले इंडेक्स फंड में डालें। निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, ऐसे कई विकल्प हैं भारत में।
तीसरा, वो एसेट एलोकेशन वाली बात।
हाँ, अपनी उम्र, लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से तय करें कि कितना इक्विटी, कितना डेट, और इसे लिख लें। जैसे 30 साल का कोई है तो शायद 80% इक्विटी इंडेक्स फंड, 20% PPF या डेट फंड,
और फिर उस पर टिके रहना।
हाँ, और साल में एक बार उसे रीबैलेंस करना, मतलब वापस अपने तय अनुपात पर ले आना।
चौथा, लागत कम करना।
बिल्कुल, कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड चुने, कोशिश करें 0.2-0.3% से कम हो, डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर नहीं, टैक्स बचाने वाले रास्ते जैसे PPF, NPS, ELSS का इस्तेमाल करें।
पांचवा, निवेश को ऑटोमेट करना, SIP की तरह।
हाँ, हर महीने एक तय रकम आपके बैंक से कटकर इंडेक्स फंड में चली जाए, पहले खुद को भुगतान करें, इससे अनुशासन बना रहता है और मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं रहती।
और छठा, जो शायद सबसे मुश्किल है,
भावनात्मक अनुशासन।
बाजार गिरेगा पक्का गिरेगा, तब डरना नहीं है, बेचना नहीं है। बाजार चढ़ेगा तब लालच में नहीं आना है, अपनी योजना पर टिके रहें, स्टे द कोर्स।
मतलब उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है।
बिल्कुल, कितना बचाते हैं, एसेट एलोकेशन क्या है, लागत कितनी है, और हमारा अपना व्यवहार, बाजार क्या करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि सफल निवेशक बनने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है।
सही कहा।
सादगी, कम लागत, अनुशासन और धैर्य, ये गुण ज्यादा जरूरी हैं। और ये जानना कि सिर्फ बाजार का औसत रिटर्न लेकर भी लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, ये एक तरह से सुकून देता है। वो लगातार सबसे अच्छा खोजने का दबाव हट जाता है।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा असरदार लगी वो है लागत का प्रभाव। हम हमेशा रिटर्न देखते हैं, पर मैल्किल दिखाते हैं कि लागत कम करना कितना शक्तिशाली है। और दूसरा अनुशासन, कुछ सरल नियमों पर टिके रहने की ताकत। ये बातें लगती साधारण है पर इनका असर बहुत गहरा है।
तो श्रोताओं के लिए आज का विचार ये है, अगर मैल्किल सही हैं और बाजार ज्यादातर कुशल है, तो क्या इसका मतलब है कि अवसर शून्य है? या फिर क्या बाजार की इस कुशलता में भी कभी कभार छोटी मोटी खामियां या विसंगतियां हो सकती हैं? और अगर हाँ, तो क्या उन्हें समझना, भले ही उनसे नियमित रूप से पैसा ना बने, फिर भी हमें एक बेहतर निवेशक बनने में मदद कर सकता है? सोचिएगा इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।